अध्याय 57। वाचा के संदूक का पलिश्तियों द्वारा ले लिया जाना। यह अध्याय 1 शमूएल 3-7 पर आधारित है। एली के परिवार को एक और चेतावनी दी जानी थी। परमेश्वर महायाजक और उसके पुत्रों से संपर्क नहीं कर सकता था। उनके पापों ने घने बादल के रूप में उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बाहर कर दिया था, परंतु बुराइयों के वातावरण में भी शमूएल परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ रहा और सर्वोच्च परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के रूप में शमूएल को यह आदेश दिया गया कि वह एली के घर तक दंडाज्ञा का संदेश पहुंचाए। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी थीं और उसे दिखाई नहीं पड़ता था और वह लेटा हुआ था। परमेश्वर के मंदिर में उसके दीपक के बुझने से पहले, जहां परमेश्वर का संदूक था और जहां शमूएल सोया हुआ था, यहोवा ने शमूएल को पुकारा। यह मानकर कि वह आवाज एली की थी, बालक शमूएल दौड़कर याजक की शैया के निकट गया और बोला, मैं यहां हूं क्योंकि तूने मुझे पुकारा है। उसे उत्तर मिला, मैंने तुझे नहीं पुकारा पुत्र, जा फिर से लेट जा। 3 बार शमूएल को पुकारा गया और 3ों बार उसने ऐसे ही उत्तर दिया, और फिर एली समझ गया कि वह रहस्यमयी बुलाहट परमेश्वर की वाणी थी। अपने चुने हुए दास, जिसके बाल सफेद हो चुके थे, को छोड़कर परमेश्वर ने एक बालक के साथ संपर्क किया। यह अपने आप में एली और उसके परिवार के लिए एक कटु लेकिन उचित फटकार थी। एली के हृदय में ईर्ष्या या द्वेष की थोड़ी सी भी भावना जागृत नहीं हुई। दोबारा बुलाए जाने पर शमूएल को उसने ऐसा कहने को कहा, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। श्रद्धायुक्त भय के कारण कि महान परमेश्वर ने उससे बात की, शमूएल एली द्वारा बताए गए शब्द ठीक ठीक याद नहीं रख सका। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सुनने वालों के कान झनझना उठेंगे। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उस घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उससे कह चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र स्वयं ही भ्रष्ट हुए और उसने नहीं रोका। इसी कारण मैंने एली के परिवार को श्राप दिया है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेलबलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। परमेश्वर से संदेश प्राप्त करने से पहले शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न ही यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति के ऐसे प्रत्यक्ष प्रदर्शनों से वह परिचित नहीं था जैसे कि भविष्यद्वक्ताओं को दिखाए जाते थे। अप्रत्याशित रूप से स्वयं को प्रकट करने में प्रभु का यह प्रयोजन था कि एली इस बारे में शमूएल के अचंभे और पूछताछ के माध्यम से जाने। शमूएल उसे दिए गए इस भयावह संदेश के विचार पर भय और आश्चर्य से भर गया। प्रातःकाल वह हमेशा की तरह अपने कामकाज करता रहा, लेकिन उसके हृदय पर एक भारी बोझ था। प्रभु ने उसे उस भयानक भविष्यवाणी को प्रकट करने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए वह चुप रहा और जहां तक संभव था एली की उपस्थिति से दूर रहता रहा। वह कांप रहा था कि कहीं किसी प्रश्न के कारण वह उसके विरुद्ध ईश्वरीय दंडाज्ञा की घोषणा करने को विवश न हो जाए, जिसके लिए उसके मन में इतना प्रेम और श्रद्धा थी। एली को विश्वास था कि संदेश उस पर और उसके घराने पर किसी महान विपत्ति की भविष्यवाणी था। उसने शमूएल को बुलाया और उसे सच्चाई से वह सब बताने को कहा जो प्रभु ने प्रकट किया था। शमूएल ने आज्ञा का पालन किया और वृद्ध पुरुष उस भयावह कथन के प्रति दीन समर्पण में झुक गया। वह तो यहोवा है, जो उसे भला लगे वह वही करे। अभी भी एली ने सच्चे प्रायश्चित के फल को प्रकट नहीं किया। उसने अपने दोष का अंगीकार किया, लेकिन पाप को त्यागने में असफल रहा। वर्ष के बाद वर्ष प्रभु ने उसके भयानक दंडादेश में विलंब किया। इतने वर्षों में बीते दिनों की गलतियों को सुधारा जा सकता था, लेकिन वृद्ध याजक ने उन बुराइयों के निवारण के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू को दूषित कर रही थी और इज़राइल में सैकड़ों को विनाश की ओर ले जा रही थी। परमेश्वर की सहनशीलता ने होपनी और पीनहास के हृदयों को कठोर कर दिया और आज्ञा उल्लंघन में वे भी और भी निर्भीक हो गए। उसके घराने को मिली ताड़ना और चेतावनी का संदेश एली द्वारा पूरी प्रजा को ज्ञात कराया गया। इस साधन से वो कुछ मात्रा में उसके बीते दिनों की उपेक्षा के दुष्प्रभाव को रोकना चाहता था, लेकिन प्रजा ने इन चेतावनियों की अवहेलना की, जैसे कि याजकों ने की थी। आस पड़ोस के राज्य भी, जो इसराइल में खुले आम हो रहे अधर्म के कामों से परिचित थे, अपने अपराधों और मूर्ति पूजा में और भी निर्भीक हो गए। उन्हें अपने पापों के लिए दोषी होने का आभास तक न रहा। यह आभास तब होता जब इसराइलियों ने अपनी अखंडता बनाए रखी होती। लेकिन प्रतिकार का एक दिन आने को था। परमेश्वर की सत्ता को परे रख दिया गया था, उसकी आराधना की उपेक्षा और तिरस्कार किया जा रहा था, और उसका हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया था, जिससे उसके नाम का गौरव कायम रखा जा सके। अब इसराइल पलिश्तियों पर चढ़ाई करने को गए, और उन्होंने एबनेजेर के आसपास छावनी डाली, और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। इसराइलियों ने यह अभियान परमेश्वर के परामर्श के बिना, महायाजक या भविष्यद्वक्ता की सहमति लिए बिना प्रारंभ किया। तब पलिश्तियों ने इसराइलियों के विरुद्ध व्यूह रचना में व्यवस्थित किया, और जब घमासान युद्ध होने लगा, इसराइली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने इसराइली सेना के लगभग 4,000 पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वह हतोत्साहित सेना छावनी में लौट कर आई, तब इसराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हारने दिया? प्रजा परमेश्वर की दंडाज्ञा के लिए परिपक्व हो चुकी थी, फिर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस भयंकर विपत्ति का कारण उनके अपने पाप थे, और उन्होंने कहा, आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शिलो से मांग ले आएं, कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। परमेश्वर ने न ही आज्ञा दी थी न अनुमति कि संदूक को सेना के पास आना चाहिए, फिर भी इसराइली आश्वस्त थे कि विजय उन्हीं की होगी। और जब वह संदूक एली के पुत्रों के द्वारा छावनी में लाया गया, सारे इसराइली पूरा बल लगाकर ललकारे। पलिश्ती वाचा के संदूक को इसराइल के देवता के रूप में देखते थे। जितने भी गौरवशाली कार्य यहोवा ने अपने लोगों के लिए किए थे, उनका श्रेय संदूक को दिया गया। जब उन्होंने उसके पहुंचने पर ललकार को सुना, तो उन्होंने कहा, इब्रियों की छावनी में इतने ऊंचे स्वर में ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमें कौन बचाएगा? ये तो वही देवता है जिन्होंने मिपनियों पर बीहड़ में सब प्रकार की विपत्तियां भेजी थी। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगां, कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए, वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े। बहुत नरसंहार हुआ और इसराइल की हार हुई। 30,000 पुरुष मैदान में मृत पड़े थे, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मारे गए। एक बार फिर इतिहास के पृष्ठों पर आने वाले सभी युगों के लिए एक साक्ष्य छोड़ा गया कि परमेश्वर के तथाकथित लोगों के अधर्म को अवश्य दंडित किया जाएगा। परमेश्वर की इच्छा का जितना अधिक ज्ञान हो, उतना ही बड़ा उनका पाप होगा जो उस इच्छा का तिरस्कार करते हैं।
सबसे भयानक विपत्ति जो घटित हो सकती थी, वो इसराइल पर आ पड़ी थी। परमेश्वर का संदूक पलिश्तियों द्वारा अधिकृत कर लिया गया था और शत्रु के कब्जे में था। जब यहोवा की सामर्थ और स्थायी उपस्थिति इसराइल के बीच से उठ चुकी गई, तब इसराइल का गौरव जाता रहा। इस पवित्र संदूक के साथ परमेश्वर के सत्य और सामर्थ के सबसे आश्चर्यजनक प्रदर्शन संबद्ध थे। बीते दिनों में जब भी वो प्रकट होता था, चमत्कार पूर्ण विजय प्राप्त होती थी। वो सोने के करूब के पंखों से आच्छादित था, और यहोवा का तेज, जो सर्वोच्च परमेश्वर का सदृश चिन्ह था, पवित्रों के पवित्र में उसके ऊपर ठहरता था। लेकिन अब वो कोई विजय लेकर नहीं आया। इस अवसर पर वो बचाव प्रमाणित नहीं हुआ, और इसराइल के प्रत्येक भाग में शोक मनाया गया। उन्हें समझ नहीं आया था कि उनका विश्वास केवल नाम मात्र का विश्वास था, और परमेश्वर के साथ प्रबल होने का सामर्थ्य खो चुका था। संदूक के भीतर परमेश्वर की व्यवस्था भी उसकी उपस्थिति का प्रतीक थी, लेकिन उन्होंने आज्ञाओं की अवमानना की और उनके अधिकार का तिरस्कार किया, और परमेश्वर के आत्मा को दुख पहुंचाया। जब लोग पवित्र सिद्धांतों का पालन किया करते थे, तब परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ्य के द्वारा उनके लिए कार्य करने के लिए उनके साथ होता था। लेकिन जब वे संदूक को देखते थे और उसे परमेश्वर से संबद्ध नहीं करते थे और न ही उसकी आज्ञा के पालन द्वारा उसकी प्रकट इच्छा का मान रखते थे, तब वो संदूक उनके लिए एक साधारण डिब्बे से थोड़ा अधिक हितकारी होता था। वे संदूक को उस दृष्टि से देखते थे जैसे मूर्ति पूजक देश अपने देवताओं को देखते थे, मानो उसमें अपने आप में उद्धार और सामर्थ्य के तत्व विद्यमान हों। उन्होंने उसमें रखी आज्ञा का उल्लंघन किया, क्योंकि उनके द्वारा की गई आराधना ने मूर्ति पूजा, पाखड़ और रीतिवाद को बढ़ावा दिया। उनके पाप ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया था, और वो उन्हें तब तक विजय नहीं दे सकता था जब तक कि वे अपने अधर्म के कार्यों का परित्याग न कर दे और उनके लिए प्रायश्चित न करें। इसराइल के मध्य मिलाप वाले तंबू और वाचा के संदूक का होना पर्याप्त नहीं था। यह कि याजक बलि की भेंट चढ़ाते थे और लोगों को परमेश्वर की संतान कहा जाता था, पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर उनके निवेदन का मान नहीं रखता जो हृदय में अधर्म को संजोए रखते हैं। नीति वचन 28 आयत 9 में लिखा है, जो अपने कान व्यवस्था को सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जब सेना युद्ध करने को गई, वो वृद्ध और अंधा एली शिलोह में ठहर गया था। चिंतायुक्त पूर्वाभास के साथ वो संघर्ष के परिणाम की प्रतीक्षा करता रहा। उसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था। वो मिलाप वाले तंबू के फाटक के बाहर मार्ग के किनारे बैठा रणभूमि से दूत के आने की बाट जोह रहा था। बहुत समय बाद सेना से एक बिन्यामीनी मनुष्य अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए तेजी से वो चढ़ाई चढ़कर आया जो शहर को जाती थी। मार्ग के किनारे बैठे वृद्ध पुरुष को अनदेखा कर वो शहर की ओर दौड़ा और वहां पहुंचकर उत्सुक भीड़ को हार और जीत का समाचार सुनाया। हाहाकार और विलाप की आवाज मिलाप वाले तंबू के पास बैठे प्रतीक्षा करने वाले के कानों में पड़ी। दूत को उसके पास लाया गया और आगंतुक ने उससे कहा, इसराइली पलिश्तियों के सामने से भाग आए हैं और भयानक नरसंहार हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। पुत्रों के मारे जाने की दुखद सूचना तक तो एली से सब सहन कर लिया, क्योंकि उसने ऐसा ही सोचा था। लेकिन जब दूत ने आगे संदूक के लिए बताया तो उसके मुख पर अकथनीय वेदना उभर आई। ये विचार कि उसके पाप ने इस प्रकार परमेश्वर का निरादर किया था, जिसके कारण परमेश्वर ने इसराइल से अपनी उपस्थिति को हटा लिया, उसकी सहनशक्ति से बाहर था। वो शक्तिहीन हो गया और गिर गया, और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। पीनहास की पत्नी अपने पति के अधर्म के बावजूद परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। अपने पति और अपने ससुर की मृत्यु और विशेषकर परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने का समाचार सुन वो मृत्यु की गोद में सो गई। उसने सोचा कि इसराइल की अंतिम आशा भी जाती रही, और विपत्ति की इस घड़ी में जन्मे शिशु का नाम उसने इकाबोद रखा, जिसका तात्पर्य है अकीर्तिकर। और मरते समय वो ये शब्द दोहराती रही, इसराइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। लेकिन प्रभु ने अपनी प्रजा को बिल्कुल ही नहीं छोड़ दिया था, ना ही वो अधर्मियों का हर्षोल्लास देर तक सहन करने वाला था। उसने इसराइल को दंडित करने के लिए साधन के रूप में पलिश्तियों का उपयोग किया था, और अब पलिश्तियों को दंड देने के लिए उसने संदूक का प्रयोग किया। बीते समय में परमेश्वर के आज्ञाकारी लोगों का गौरव और सामर्थ्य होने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति उस पर ठहरती थी। वो अदृश्य उपस्थिति अभी भी साथ होगी, जिससे कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों का विनाश हो सके। परमेश्वर अधिकतर उसकी तथाकथित प्रजा की निष्ठाहीनता को दंडित करने के लिए अपने सबसे कट्टर शत्रुओं का प्रयोग करता है। इसराइल को दंडित हुआ देख दुष्ट कुछ समय के लिए आनंद मना सकते हैं, लेकिन समय आएगा जब उन्हें एक पवित्र, पाप से घृणा करने वाले परमेश्वर के दंडादेश का सामना करना होगा। जहां भी अधर्म को संजोया जाता है, वहां शीघ्र और अचूक पवित्र दंडाज्ञाएं भेजी जाती हैं। पलिश्तियों ने हर्षोल्लास के साथ परमेश्वर के संदूक को उठाकर अशदोद, जो 5 मुख्य नगरों में से एक था, में पहुंचाकर उसे अपने देवता दागोन के मंदिर में रख दिया। उन्होंने कल्पना की कि जो सामर्थ्य इससे पहले संदूक के साथ होता था अब उनका होगा, और ये कि उस सामर्थ्य के साथ मिलने से वे अपराजेय हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन मंदिर में प्रवेश करने पर उन्होंने वो दृश्य देखा जिससे वे घबरा गए। दागोन यहोवा के संदूक के सामने औधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा था। याजकों ने मूर्ति को श्रद्धापूर्वक उठाकर नियमित स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने मूर्ति को विकृत हुआ पाया और देखा कि वो फिर संदूक के सामने पृथ्वी पर गिरी पड़ी थी। इस मूर्ति का ऊपरी भाग मनुष्य के समान था और निचला भाग मछली के स्वरूप में था। प्रत्येक अंग जो मानव आकृति से मेल खाता था वो कटा हुआ था और केवल मछली का शरीर बचा हुआ था। याजक और लोग भयभीत हो गए। उन्होंने इस रहस्यमयी घटना को एक अपशकुन होने की दृष्टि से देखा जो इब्रियों के परमेश्वर के सामने उनके और उनकी मूर्तियों के विनाश का पूर्वाभास करा रही थी। अब उन्होंने संदूक को हटाकर एक अलग भवन में रख दिया। अश्दोद के निवासियों पर एक घातक व कष्टदायक रोग की मार पड़ी। इज़राइल के परमेश्वर द्वारा मिस्र पर भेजी गई विपत्तियों का स्मरण कर लोगों ने उनके बीच संदूक की उपस्थिति को उनकी आपदाओं का कारण बताया। संदूक को गत नामक नगर में पहुंचाने का निर्णय लिया गया, लेकिन विपत्ति वहां तक भी पहुंच गई, इसलिए उस नगर के वासियों ने संदूक को एकोन भेज दिया। यहां के लोग संदूक के आने से डर गए और चिल्लाने लगे, इज़राइल के परमेश्वर का संदूक हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। जैसा गत और अश्दोद के लोगों ने किया था, एकोनी भी सुरक्षा के लिए अपने देवताओं की शरण में गए, लेकिन विनाशक का कार्य चलता रहा और दुखी होकर नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। संदूक को बहुत दिनों तक लोगों के घरों के बीच रखने के डर से उन्होंने उसे खुले मैदान में रख दिया। इसके बाद चूहों का आतंक जो पूरे देश में फैल गया और जिसने खेतों और भंडारों दोनों की उपज को नष्ट कर दिया। अकाल और बीमारों द्वारा संपूर्ण विनाश अब राज्य को चुनौती दे रहा था। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीनों तक रहा, और इस पूरे समय के दौरान इसराइलियों ने इसकी पुनः प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन पलिश्ती संदूक से छुटकारा पाने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितने कि उसे प्राप्त करने के लिए थे। बल का स्रोत होने के बजाय वो उनके लिए एक बड़ा बोझ और श्राप था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कौन सा रास्ता अपनाएं, क्योंकि जहां भी संदूक जाता परमेश्वर की दंडाज्ञा वहां पहुंच जाती। तब लोगों ने देश के सरदारों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं को बुलाया और उत्सुकतावश उनसे पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि हम संदूक को वापस इसके घर कैसे भेजें? उन्हें संदूक को एक बहुमूल्य दोष बलि की भेंट के साथ लौटाने का सुझाव दिया गया। याजकों ने कहा, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। विपत्ति से बचाव करने या उसे दूर करने के लिए मूर्ति पूजक जातियों में ये प्रथा थी कि वे विनाश के स्रोत या विपत्ति के कारण प्रभावित शरीर के अंग की सोने, चांदी या अन्य धातु की आकृति बनाकर एक स्तंभ पर या किसी प्रमुख स्थान पर रख देते थे, और उन आकृतियों को जिन विपत्तियों का वे प्रतीक थी उनके प्रति प्रभावशाली सुरक्षा माना जाता था। ऐसी ही प्रथा कुछ मूर्ति पूजक जातियों में अभी भी प्रचलित है। जब एक रोगग्रस्त मनुष्य चंगाई प्राप्त करने के लिए अपने देवता के मंदिर जाता है, वो अपने साथ प्रभावित अंग की आकृति ले जाता है जिसे वो अपने देवता को चढ़ावे के रूप में चढ़ाता है। प्रचलित अंधविश्वासों के आधार पर पलिश्ती सरदारों ने लोगों को उन पर आई विपत्तियों के प्रतिरूप बनाने को कहा। पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। इन बुद्धिजीवियों ने स्वीकार किया कि संदूक के साथ एक रहस्यमयी सामर्थ्य था जिसका सामना करने की प्रतिभा उनमें नहीं थी। फिर भी उन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा छोड़कर परमेश्वर की उपासना करने की सलाह नहीं दी। वे अभी भी इज़राइल के परमेश्वर से घृणा करते थे, हालांकि उसके दंडादेशों ने उन्हें उसके प्रभुत्व के प्रति समर्पण करने को विवश कर दिया था। इस प्रकार पापियों को परमेश्वर की दंडाज्ञाओं के आधार पर आश्वस्त हो जाना चाहिए कि परमेश्वर के विरुद्ध संघर्ष करना व्यर्थ है। संभव है कि वे उसकी सत्ता को समर्पित होने के लिए विवश हो जाएं, पर हृदय से वे उसके नियंत्रण का विरोध करते रहें। ऐसा समर्पण पापी को बचा नहीं सकता। हृदय को परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, पवित्र अनुग्रह से वशीभूत होना चाहिए, इससे पहले कि मनुष्य का प्रायश्चित स्वीकार हो। कितनी उदार है दुष्टों के लिए परमेश्वर की चिर सहिष्णुता। मूर्ति पूजक पलिशिति और स्वधर्म त्यागी इज़राइल दोनों ने परमेश्वर की आशीषों को पाया था। 10,000 अज्ञात दया की आशीषें चुपचाप बरस रही थी। प्रत्येक आशीष उन्हें देने वाले दाता के बारे में बता रही थी, लेकिन वे उसके प्रेम के प्रति उदासीन थे। मनुष्य के पुत्रों के प्रति परमेश्वर की सहनशीलता अधिक थी, लेकिन जब उन्होंने हठी होकर प्रायश्चित नहीं किया, तब उसने उन पर से अपना हाथ हटा लिया जो उनकी सुरक्षा करता था। उन्होंने परमेश्वर की कृतियों में, उसके वचन की चेतावनियों में, परामर्श में, फटकार में उसकी आवाज को सुनने से इनकार कर दिया, और इस प्रकार परमेश्वर उनसे दंडादेशों के माध्यम से बात करने के लिए बाध्य हो गया। कुछ पलिश्ती थे जो संदूक को उसके अपने स्थान पर लौट जाने देने के पक्ष में नहीं थे। इज़राइल के परमेश्वर के सामर्थ का ऐसा अंगीकरण पलिश्तियों की शान के लिए अपमानजनक होता। लेकिन याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने लोगों को डांटा कि वे मिस्रियों और फिरौन के हठीलेपन को न अपनाएं, और न ही उसके कारण अपने ऊपर और अधिक विपत्तियां लाएं। एक योजना जिसे सबकी सहमति मिल गई प्रस्तावित की गई और तत्काल क्रियान्वित की गई। सोने की दोष बलि की भेंट के साथ संदूक को एक नए वाहन पर रखा गया, ताकि अपवित्र होने का खतरा न हो। इसके साथ दो दुधार गायें जो जुए तले न आई थीं जोती गईं। उन गायों के बछड़ों को घर पर बंद कर दिया गया और गायों को उनकी इच्छानुसार कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। यदि संदूक लेवियों के निकटतम शहर बेतशेमेश के मार्ग से इस प्रकार इसराइलियों के पास लौट जाए, तो पलिश्ती इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगे कि इसराइल के परमेश्वर ने उन पर ये विपत्ति भेजी थी, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि ये मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई। स्वतंत्र होकर गायों ने अपने बछड़ों को छोड़ बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया और रंभाती हुई चली गईं। किसी मनुष्य ने उनका मार्गदर्शन नहीं किया, इन धैर्यवान पशुओं ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। पवित्र उपस्थिति संदूक के साथ थी और वह अपने निर्धारित स्थान पर सुरक्षित पहुंच गया। ये गेहूं की फसल काटने का समय था और बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे। जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब उसको देखने से वे आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। पलिश्तियों के सरदार, जो संदूक के पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक गए थे, उसकी अगवानी के साक्षी ठहरे और वे एकोन को लौट आए। विपत्तियां थम गईं और उन्हें विश्वास हो गया कि उन पर आई आपदाएं इज़राइल के परमेश्वर की दंडाज्ञा थी। बेतशेमेश के पुरुषों ने शीघ्रता से संदूक के उनके अधिकृत होने का समाचार फैला दिया और पड़ोस के देश के लोग उसकी वापसी का स्वागत करने उमड़ पड़े। संदूक को उस पत्थर पर रखा गया जिसे पहले वेदी की तरह प्रयोग किया जाता था, और उसके सम्मुख परमेश्वर के लिए अतिरिक्त बलि की भेंटें चढ़ाई जाती है। यदि भक्तों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया होता तो परमेश्वर उन्हें आशीष देता, लेकिन वे व्यवस्था का निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर रहे थे। वे संदूक को सुख का अग्रदूत मानकर आनंदित तो हुए, लेकिन वे उसकी पवित्रता को वास्तव में अनुभव नहीं कर रहे थे। उसकी अगवानी के लिए उपयुक्त स्थान तैयार करने के बजाय उन्होंने उसे खलिहान में ही रहने दिया। वे उसे निहारते रहे, और जब वे संदूक की आश्चर्यजनक वापसी के बारे में बात कर रहे थे, वे सोचने लगे कि उसका विलक्षण सामर्थ्य किसमें निहित था। अंततः उत्सुकतावश उन्होंने उसके आच्छादन को हटाकर उसे खोलने का दुस्साहस किया। संपूर्ण इज़राइल को संदूक का भय और श्रद्धा के साथ मान रखना सिखाया गया था। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उन्हें उसे ताकना नहीं था। याजक को वर्ष में केवल एक बार परमेश्वर के संदूक को देखने की अनुमति दी जाती थी। मूर्ति पूजक पलिश्तियों ने भी उसके आच्छा दुस्साहस नहीं किया था। अदृश्य स्वर्गदूत उसकी सब यात्राओं में उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। बेतशेमेश के लोगों की श्रद्धाहीन निर्भीकता को शीघ्रता से दंडित किया गया। कई लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस दंडाज्ञा से उत्तरजीवी अपने पापों का प्रायश्चित करने के बजाय संदूक को केवल अंधविश्वासी भय के साथ देखने लगे। वे उसकी उपस्थिति से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उसे हटा देने का दुस्साहस न कर सके और उन्होंने अर्थात बेतशेमेशियों ने किर्यत्यारीम के निवासियों को संदूक को वहां से ले जाने का निमंत्रण दिया। इस जगह के लोगों ने पवित्र संदूक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। उन्हें यह ज्ञात था कि वह संदूक निष्ठावान और आज्ञाकारी लोगों के प्रति ईश्वरीय कृपा दृष्टि की शपथ था। सौम्यतापूर्ण प्रसन्नता के साथ वे उसे अपने नगर में लाए और उसे एक लेवी अबीनादाब के घर में रख दिया। इस व्यक्ति ने संदूक का कार्यभार लेने के लिए अपने पुत्र एलीआजार को नियुक्त किया और संदूक वहां बहुत समय तक रहा।
हन्ना के पुत्र पर प्रभु के स्वयं प्रकट होने के समय से आगामी वर्षों में भविष्यवाणी संबंधित कार्य के लिए शामुएल को बुलाए जाने को समस्त प्रजा द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। हालांकि एली के परिवार को ईश्वरीय चेतावनी पहुंचाना कठिन और पीड़ाजनक था, लेकिन इस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करके शामुएल ने यहोवा के दूत के तौर पर अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण दे दिया था और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इसराइलियों ने जान लिया कि शामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है।
राज्य के रूप में इसराइली मूर्ति पूजा और अधर्म की अवस्था में बने रहे और दंड के रूप में वे पलिश्तियों के अधीन रहते रहे। इस समय के दौरान शामुएल देश भर के नगर और गांवों को गया कि वो लोगों के हृदयों को उनके पूर्वजों के परमेश्वर की ओर मोड़ सकें, और उसके प्रयत्न सफल हुए। 20 वर्षों तक शत्रुओं द्वारा उत्पीड़न सहने के बाद इसराइली विलाप करते हुए यहोवा के पीछे चलने लगे। शामुएल ने उन्हें सम्मति दी, यदि तुम अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराए देवताओं और अश्तोरे देवी को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। यहां हम देखते हैं कि शामुएल के समय में व्यवहारिक धर्मपरायणता और वास्तविक धर्म सिखाया जाता था, जैसा कि मसीह इस पृथ्वी पर होने के समय सिखाता था। मसीह के अनुग्रह के अभाव में प्राचीन इसराइल के लिए धर्म के दिखावटी रूप व्यर्थ थे। यही वर्तमान इसराइल पर भी लागू होता है। प्राचीन इसराइल द्वारा अनुभव किए गए सच्चे सहृदय धर्म अर्थात वास्तविक धर्म की ऐसी ही धार्मिक जागृति की आवश्यकता है। परमेश्वर की ओर लौटने वालों द्वारा लिया जाने वाला पहला कदम प्रायश्चित है। कोई भी किसी अन्य के इस कार्य को नहीं कर सकता। हमें व्यक्तिगत रूप से हमारी आत्माओं अर्थात हृदयों को परमेश्वर के सम्मुख दीन करना चाहिए और मूर्तियों अर्थात पूजित वस्तुओं को दूर कर देना चाहिए। जब हम वो सब कर लेते हैं जो हम कर सकते हैं, प्रभु उसके उद्धार को हम पर प्रकट करेगा। गोत्रों के सरदारों के सहयोग से मिस्पा में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। यहां पर लोगों ने एक विधिवत व्रत रखा। दीन होकर लोगों ने अपने पापों का अंगीकार किया और सुने निर्देशों का पालन करने के दृढ़ संकल्प को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने शामुएल को न्याय करने का अधिकार प्रदान किया। पलिश्तियों ने इस सम्मेलन को युद्ध की विचार सभा समझा और इसराइलियों की योजनाओं के परिपक्व होने से पहले ही वे एक सशक्त सेना के साथ उन्हें तितर बितर करने के लिए निकल पड़े। उनके आने की सूचना पाकर इसराइल में डर की लहर दौड़ गई और इसराइलियों ने शामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वो हमें पलिश्तियों के हाथ से बचाए। जब शामुएल होम बलि को चढ़ा ही रहा था, उस समय पलिश्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। फिर उस शक्तिशाली परमेश्वर ने जो अग्नि और धुएं और मेघ गर्जन के बीच सीने पर उतरा था, जिसने लाल समुद्र के दो भाग कर दिए और जिसने इज़राइल की संतान के लिए यर्दन में से मार्ग निकाला, अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। एक बड़े बवंडर ने बढ़ती हुई सेना को अपनी चपेट में ले लिया और पृथ्वी पर शूरवीर योद्धाओं के मृत शरीरों का ढेर लग गया। इज़राइली श्रद्धा से चुपचाप खड़े रहे और वे भय और आशा से कांप रहे थे। जब उन्होंने अपने शत्रुओं का नरसंहार देखा, उन्हें ज्ञात हो गया कि परमेश्वर ने उनके प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया था। हालांकि वे युद्ध के लिए हथियारबंद नहीं थे, उन्होंने वध किए हुए पलिश्तियों के हथियार छीनकर भागती हुई सेना का बेतकर तक पीछा किया। यह महत्वपूर्ण विजय उसी मैदान पर प्राप्त हुई जहां 20 वर्ष पूर्व इज़राइल पलिश्तियों के आगे हार गया था। याजकों का वध किया गया था और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया था। राष्ट्र और व्यक्तियों के लिए परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का मार्ग ही सुख और सुरक्षा का मार्ग है, जबकि आज्ञा के उल्लंघन का मार्ग हमें विनाश और पराजय की ओर ले जाता है। पलिश्ती अब पूर्ण रूप से अधिकृत हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इज़राइल से छीने हुए गढ़ भी उन्हें लौटा दिए और कई वर्षों तक वे शत्रुता के कृत्यों से दूर रहे। दूसरे देशों ने भी इस उदाहरण को अपनाया और शामुएल के पूरे शासनकाल में इज़राइली शांति से रहे।
मिस्पा और शेन के बीच में शामुएल ने स्मारक के रूप में एक बड़ा सा पत्थर खड़ा किया, जिससे इस अवसर को कभी भी भुलाया न जाए। उसने इस पत्थर का नाम एबनेजेर रखा, जिसका अर्थ है सहायता का पत्थर, और उसने लोगों से कहा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की।